चाचा, अब कैसे लग रहा है?
उल्टी जैसा लग रहा है, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है।
अभी दवा लेकर आराम करें, इंशाल्लाह कुछ देर में ठीक हो जाएगा।
हमारा जहाज क्रैश होने वाला था, हम लोग सब मरने वाले थे मसूद। इतनी आसानी से मसूद, इतनी आसानी से इस दुनिया में आने से आसान, जिंदगी जीने से आसान, काश मेरे पास होते। जितनी देर जहाज नीचे आ रहा था, सिर्फ तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मैं सोच रही थी कि तुम्हें देखे बगैर ही मर जाऊंगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आज सुबह सफर पर निकलने से पहले ही तुम्हें बताया था। हंसने की बात है, यहाँ सुबह है और वहां रात। जरूर जरूर इस लम्हे में मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम बड़े आराम से सो रहे होगे। मसूद, बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जब तुम ईरान वापस आओगे तब तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अगर जिंदा रही तो। पता है, मेरी जिंदगी में बहुत बड़े अजीब हादसे पेश आए हैं। पुलिस आ रही है, माफ करना मसूद।
चले गए। आप ठीक हैं?
मैं अपने कैमरे के सामने अपने कैमरे में अपने मंगेतर के साथ बात कर रही थी मसूद। इस तरह मुझे एहसास होता है कि वो मेरे साथ हैं, थोड़ा सुकून मिलता है। करामती साहब, माफ करना, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे खतरनाक हालात में जब सब डर के मारे मर रहे थे, आप किस तरह इतने आराम से बैठे हुए थे? असलन आपके चेहरे पर बिल्कुल ही घबराहट नहीं थी, आपके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी उस वक्त। आखिर आप सोच क्या रहे थे?
यही कि अब्बास बाबाई ने कितनी मर्तबा से हालात का सामना किया होगा, मौत के दहाने पहुंचकर वापस आए होंगे। इसी इस्फहान शहर में मैदान नक्शे जहान में खाना खाएंगे, उसके बाद जहां भी आप कहें।
मैं सोच रही हूं कि बेहतर होगा कि हम आपके गांव जाएं, जियार
या अब्बासाबाद।
अब्बासाबाद
अब्बास बाबाई की जिंदगी ने लैली गफूरी को अपने अंदर डुबो दिया था। मुझे याद है कि तुर्की जाने से पहले आखिरी बार जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा था, जब तक अब्बास बाबाई जैसों की जिंदगी के दास्तानों के बारे में लिखा नहीं जाए, राइटर्स को किसी ख्याली हीरो के बारे में नहीं लिखना चाहिए। ऐसा हीरो जो ना किसी के ख्यालात की पैदाइश है, ना किसी इंसान की सोच।
अजीब है, मेरे कनाडा जाने से पहले लैली ने कभी ऐसी चीजों के बारे में सोचा तक नहीं था।
बदलाव ने ही तो इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया है।
मैं चाहता था अगर आपको एतराज ना हो तो अपने और शहीद बाबाई के बारे में कुछ बताएं।
लली गफूरी को नहीं पता है कि मैं अब्बास बाबाई का मकरूज क्यों हूं। मैंने उन्हें वादा किया था कि जैसे ही इस किताब का काम मुकम्मल हो जाएगा मैं उन्हें बताऊंगा। मैंने अपने साथ अब्बास बाबाई की जिंदगी की दास्तान लिखी है। मैं समझता हूं अगर आप लैली गफूरी को पढ़कर सुनाएं तो अच्छा होगा। मैं तुर्की गया था ताकि अब्बास के एक क्लासमेट को ढूंढ सकूं। तुर्की से सीधा तेहरान आया ताकि मेरी दास्तान जो वहाँ लिखी थी लैली गफूरी को दे दूं और फिर इस्फहान जाऊं। लेकिन
क्या आपको पता है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो लैली कहाँ जा रही थी?
नहीं, लेकिन आखिरी मर्तबा हमने फ़ोन पर बात की थी तो उन्होंने कहा कि तहकीकात का काम ख़त्म हो गया था, बस कुछ ही बाकी था। मुझे इस्फहान वापस जाना होगा। काश हम एक दूसरे से किसी बेहतर मौके पर मिले होते।
करामती साहब, मुझे माफ़ कीजिएगा।
किस लिए?
आपके बारे में जो गलत सोचा था उसके लिए।
कोई बात नहीं, खुदा हाफिज़।
इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे।
शहीद बाबाई की ये 14 फाइटर जेट की जगह पर इस्फहान में पोस्टिंग थी। जूते पॉलिश करना, सिगरेट बेचना, हाफिज का फाल देखना इस्फहान में मेरा काम था। सुबह सुबह अपने घर जियार से निकल जाता जो इस्फहान से बहुत दूर था। कुछ चल के और कुछ वहाँ से गुजरने वाली बस या मिनी बस में सवार होकर इस्फहान पहुँचता था। मेरे वालिद कुएं में गिरकर मर गए थे और हमारे पास जमीन भी नहीं थी कि किसानी कर सके। वहाँ खेती बाड़ी भी बहुत कम होती थी। मेरी माँ, भाई और बहन उस रोटी के इंतजार में रहते थे जो शाम को घर ले जाता था।
वो जो मिट्टी को एक नजर में तिरियाक बनाते हैं, क्या मुझ जैसे बच्चे पर भी एक नजर करेंगे? बेहतर होगा कि मैं अपने दर्द को ऐसे तबीबों को ना बताऊं जो से।
क्या बात है भाई?
आनी का सरप्राइज है, कहा था घर जल्दी नहीं आना।
पॉलिश, बूट पॉलिश, आइए आपके जूते चमका दूं। आइए आइए, हाफिज का फाल लीजिए।
आएंगे लेकिन सिर्फ एक डिश बनाना।
साहब,
अब ये भी तुमसे ही सीखना होगा।
तो सीख लो।
चलो भाई मैं चलता हूँ।
साहब आपके जूतों पर धूल चढ़ गई है, आइए चमका देता हूँ।
चलो जाकर जूते साफ करवा लेते हैं।
मेरे तो साफ हैं।
आओ, डरो नहीं, पैसे मैं दे दूंगा।
अरे तुमने लवाक में मुझसे जो $50 लिए थे वो भी अब तक वापस नहीं दिए हैं।
भाई मलिया के सामने बातें मत करना, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
खुदा हाफिज।
सलाम अलैकुम बेटा।
वालेकुम सलाम। साहब आपका पैर मेरे जानों पर रखिए, मैं अच्छे से कर पाऊंगा। साहब
नहीं बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता है।
तो आप ये लीजिए, लीजिए।
शुक्रिया बेटा।
कोई बात नहीं। साहब आप उसी बस में काम करते हैं ना जहाँ जहाज है?
जी हाँ।
मैंने वहाँ के सभी जहाजों को देखा है।
तुम इस्फहान में रहते हो?
नहीं साहब, मैं जियार से हूँ।
जियार?
हाँ।
ये कहाँ है?
जो हाईवे आपके बेस पर जाता है वहीं से एक कच्ची सड़क है, वो कच्ची सड़क सीधे हमारे गाँव जाती है।
गांव के बच्चों को तो किसानी करनी चाहिए, तुम क्यों गांव छोड़कर शहर आए हो?
मजबूर हूँ, हमारे पास जमीन नहीं है। मेरे वालिद लोगों के लिए काम करते थे, जो भी काम मिलता, लेकिन वो भी हमें अकेला छोड़कर चले गए।
कहाँ गए?
उसी जगह जहाँ हम सबको एक दिन जाना है। कुआं खोदते थे, रस्सी टूट गई और वो गिर कर मर गए।
खुदा उनकी मगफिरत करे।
तो क्या तुम किसी दूसरे की जमीन पर काम नहीं कर सकते थे?
मैं एक सादा सा किसान नहीं बनना चाहता हूँ साहब, मैं एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर बनना चाहता हूँ।
बहुत अच्छे।
मैं शहर आया हूँ ताकि कोई अच्छा सा काम काज ढूंढ के एक कमरा किराए पर लेकर मेरे घर वालों को अपने गाँव से एक बड़े गाँव में ले आऊँ, यानी कहाँ? इस्फहान। इस्फहान में अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब डिप्लोमा मिल जाएगा तो उससे भी बड़े गांव चला जाऊंगा। उस गांव का नाम है तेहरान। यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा और बहुत अच्छे से पढ़ूंगा और बन जाऊंगा एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर
इंशाल्लाह।
या खुदा। साहब मुझे शायरी बहुत पसंद है, जब भी मुझे फुर्सत मिलती है और कोई ग्राहक नहीं होता तो हाफिज की शायरियाँ पढ़ता हूँ। आपको नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है? पता है उन्होंने क्या कहा है?
क्या कहा है?
कहा है, रास्ते की मुश्किलात से मत परेशान हो ऐ दिल।
एक मर्द राह डरता नहीं कभी रुकावटों से। सही है
जी।
कहाँ तक पढ़ाई की है बेटा?
छठी तक, वो अभी बहुत सारी मिन्नतें कर करके। मेरे वालिद कहा करते थे उन्हें मेरा पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन पांचवी छठी क्लास तो जिद करके गया, वो नहीं चाहते थे। ये लीजिए आपके जूते चमक गए।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो तुम्हारी चप्पल और।
जी शुक्रिया शुक्रिया।
ये लो तुम्हारे पैसे, बहुत शुक्रिया।
साहब छुट्टे नहीं है।
रहने दो
साहब, ये बहुत ज्यादा है, कम से कम एक सिगरेट तो ले लीजिए।
मैं सिगरेट नहीं पीता बेटा।
तो हाफिज का फाल ले ले।
दो फाल दे दो।
ठीक है, ये लीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं, काश मेरे पास छुट्टे होते।
ठीक है, तुमसे मिलकर खुशी हुई।
मुझे भी।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
शुक्रिया। साहब एक मिनट, क्या आप एयरबेस वाले रास्ते से जा रहे हैं?
हाँ।
अगर तकलीफ ना हो तो मुझे जीआर के रास्ते तक पहुँचा देंगे?
ठीक है,
बहुत शुक्रिया।
नहीं कोई बात नहीं,
माफ करना साहब,
मुझे दे दो।
तकलीफ दी। मुझे सिर्फ हाफिज के शेर आते हैं। मीम, मजनून का दौर गया अब है हमारी बारी, हर एक की पांच दिन है बारी यानी। अब आओ।
ऐ दौलतमंद जरा कमजोरों की खबर ले, सोना जवाहरात खजाने बाकी नहीं रहेंगे।
आप मुतमईन है कि आपने सही पढ़ा है साहब? यहाँ मतलब होगा कि दौलतमंद अपने कमजोर दिल की खबर लें, यानी अपने आप को पहचानो, अपने कमजोर दिल की बात जानो।
अपने कमजोर दिल की बात नहीं, दौलतमंद कमजोरों की खबर ले, यानी तुम्हें अपने से कमजोर लोगों के दिल की बात जानने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हाँ,
लेकिन मेरा मानना ये है कि यहाँ पर इस तरह कहना चाहिए कि अपने आप को पहचाने, अपने कमजोर दिल को पहचाने।
ठीक है, हाफिज के अशआर को किसी तरह पढ़ाओ, कोई ना कोई मतलब निकलता है।
शुक्रिया साहब, आपने जहमत की।
ये लो बेटा, ये तो बहुत वजनी है।
जी साहब।
अपना ख्याल रखना।
साहब कल शहर आऊंगा।
सलामत रहो। तुम्हारा गांव कितना दूर है बेटा?
यहाँ नजदीक है साहब।
यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं देता।
शुक्रिया साहब आपने जहमत की।
कोई बात नहीं,
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज साहब।
सलामत रहो।
उस दिन के बाद अब्बास साहब हर हफ्ते हमारे गांव चक्कर लगाते थे, गांव वालों से उनकी मुश्किलात के बारे में पूछते और उनकी मदद करते थे। हमारे गांव का कुआं सूख गया था, अब्बास साहब को पता चला, उन्होंने पानी का पंप खरीदा और कुएं की मरम्मत करवाई। एक छोटा सा स्कूल और दो कमरे की डिस्पेंसरी भी बनवाई, जो गाँव के लोगों के लिए एक नेमत थी। गाँव के सभी लोग बड़े हों या छोटे अब्बास साहब को पहचानने लगे थे। एक दिन हमारे घर आए और बैठकर मेरी माँ से बात करने लगे, ताकि उनसे इजाज़त लेकर मुझे अपने साथ इस्फहान ले जाएं। अब्बास साहब ने बड़ी मिन्नतें करके मेरी माँ को राज़ी कर लिया कि वो मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इस्फहान के हॉस्टल में रहने की इजाज़त दे दें।
लेकिन रहेगा कहाँ?
वहीं पर, स्कूल में हॉस्टल भी है।
और खाएगा कहाँ?
वहीं पर खाना भी देते हैं।
तो पैसे बहुत लगेंगे, मुफ्त में तो नहीं होगा ना?
आप परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
मैं अब क्या कहूँ?
अम्मी इन्हें कहो ना मुझे भी इस्फहान ले जाए।
इसके वालिद ने, खुदा रहमत करे, पूरी जिंदगी लोगों के लिए छोटे बड़े काम किए, लेकिन कभी भी किसी के सामने शिकवा नहीं किया और ना हाथ फैलाया।
खुदा मगफिरत करे।
सच पूछो तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि उनके बच्चे कभी किसी पर बोझ बने।
ऐसा ना कहे मेरी बहन, बोझ कहाँ, ये तो कर्ज है। इंशाल्लाह डिप्लोमा मिलते ही, डिप्लोमा होने के बाद उसके लिए कोई काम ढूंढ लेंगे, काम करके कर्ज लौटा देगा।
अब मैं क्या कहूँ?
कहिए ना मुझे भी इस वाहन ले जाए।
खुदा आपको इसका सिला दे, सिर्फ एक शर्त है। शर्त यह है कि अब अगर कभी आपकी बीवी को किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना, फौरन आ जाऊंगी मैं, इसी बहाने आपके एहसान का बदला चुका सकूं।
ऐसा ना कहे, इंशाल्लाह मेहमान बन के आना हमारे घर।
साहब मैंने अपना सामान बांध लिया है।
अम्मी मुझे भी इस्फहान ले जाने के लिए कहिए ना।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लाओ बेटा बैग मुझे दे दो।
ये लीजिए,
गाड़ी में रख देता
हूं। अम्मी कहिए ना मुझे
भी इस्फहान ले जाए। अम्मी कौन करेगा?
नरगिस तो है ना यहाँ।
अरे भाई जिद नहीं करो, घर में एक मर्द होना चाहिए। जब मैं नहीं हूँ तुम घर के मर्द हो मेरे भाई।
मुझे घर का मर्द नहीं बनना है, मुझे भी इस्फहान आना है।
मेरे भाई मेरी पढ़ाई पूरी होते ही वापस आकर तुम सबको इस्फहान ले जाऊंगा। परेशान मत हो, मैं सबको ले जाऊंगा। और भाई सुनो, मेरे इन परिंदों का ख्याल रखना, याद से खाना देना, कहीं मर ना जाए। अब आओ गले लग जाओ। खुदा हाफिज अम्मी।
खुदा
हाफिज बेटा।
अब रोना बंद, ख्याल रखना। मुझे
खाना बराबर खाना, बहुत याद आएगी तुम्हारी। मत रो भाई,
मुझे बहुत फिक्र हो रही है भाई साहब,
मेरे बेटे का ख्याल रखना। खुदा आपको सलामत रखे।
इंशाल्लाह आपका सर फक से ऊंचा करेगा। अरे 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 क्या कर रहे हो बेटा, अरे तुम्हारे मत, कभी रोता नहीं है, एक दिन तुम्हें भी ले जाएगा बेटा। खुदा हाफिज।
जाएंगे बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अपना ख्याल रखना। जाएंगे बेटा, साथ जाएंगे, रोना बंद करो।
आंसू पोछो बड़े,
रोना बंद करो बेटा,
जाएंगे और परेशान हो जाएगी।
अम्मी कहिए ना मुझे भी जाना है, मैं भी चलूंगा, मुझे भी जाना है।
मैं हर हफ्ते के आखिर में ज़ियार जाकर अपनी माँ को खेती के काम में मदद किया करता था। अब्बास साहब ने मुझसे कहा था, वो खुद भी हफ्ते में दो मर्तबा मेरे स्कूल आकर मेरे बारे में कुछ पूछताछ कर लिया करते थे, मुझे जेब खर्च भी देते थे, किताब ले आते। एक दो मर्तबा जब मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले और उन्हें पता चला कि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, तो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन मुझे डांटा नहीं। अब्बास साहब जब भी किसी पर गुस्सा होते तो उसे डांटते नहीं थे, सिर्फ उसे समझाते थे, लेकिन उनकी खामोशी में बड़ा दम था। हमारे गांव के लोगों ने हमारे गांव का नाम ज़ियार से बदलकर अब्बासाबाद रख दिया था। अब्बास साहब ने अपने हाथों से अब्बासाबाद की तख्ती को तोड़कर फेंक दिया और ज़ियार के नाम की तख्ती को दोबारा लगा दिया।
जब इंसान हवाई जहाज पर सवार होता है तो वहाँ ऊपर से सभी चीजों को देख सकता है, यहाँ तक के लोगों के घर के अंदर भी नजर आता है। तुम देख सकते हो वो अपने घर के अंदर क्या कर रहे हैं। मेरा दिल चाहता है जब मैं पायलट बनूं तो एक मर्तबा करीम के घर के ऊपर से उड़ूं, और जब वो आंगन में आए तो वहाँ ऊपर से उसके सर पर थूक।
अरे
क्योंकि करीम हमेशा मुझ पर जोर आजमाता है, और एक मर्तबा मुझसे झगड़ा भी किया, मेरी पॉलिश की पेटी तोड़ दी और मेरा सैंडविच भी खा लिया, इसलिए मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तमाम जी, शुक्रिया।
शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। लेकिन बेटा, तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम्हें एग्रीकल्चर इंजीनियर बनना है?
हाँ, जब मैं बच्चा था तब ऐसे सोचता था, लेकिन अब मैं पायलट बनना चाहता हूँ। ये बताए, अगर कोई पायलट बनना चाहे तो क्या करना होगा?
हाँ, सबसे पहले बेटा, ऊपर से लोगों के घर में थूकना एक बहुत ही बुरा और नामुनासिब काम है। दूसरा ये कि वहाँ से सब इतना छोटा दिखता है कि तुम करीम का घर कैसे ढूंढ सकोगे। इसके अलावा मेरी नज़र में एक छोटी सी मुश्किल है जिसकी वजह से तुम पायलट नहीं बन सकोगे।
तो ठीक है, नहीं थूकूंगा।
वो तो जरूर, लेकिन अगर कोई पायलट बनना चाहता है तो पहले उसे एक मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ता है ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि सारी चीजें सालिम है।
मैं तो तंदुरुस्त हूँ, देखो मेरा बदन बिल्कुल सालिम है। कुछ दिन पहले मुझे जुकाम हुआ था, लेकिन अब कोई तकलीफ नहीं, ठीक हो गया हूँ।
ओ भाई साहब, तो फिर आँखों पर चश्मा क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि तुम्हारी आँखें कमजोर हो गई है।
हाँ ठीक है, मेरी आँखें थोड़ी सी कमजोर है, अगर वो लोग कहेंगे तो चश्मा नहीं पहनूंगा। पायलट बनने के लिए सब कुछ करूँगा।
मेरी नज़र में तुम बेहतरीन राइटर बन सकते हो, तुम्हारा एसे बहुत अच्छा था।
सही है,
लेकिन मुझे लिखना पसंद नहीं है, मुझे पायलट बनना है। लिखने में कोई मजा नहीं, पायलट में मजा है।
कहाँ जा रहे हो?
मुझे बात नहीं करनी।
तुम तो हाफिज के शेर बहुत अच्छे से पढ़ते हो। ला इलाहा इल्लल्लाह।
उसे इस तरह नहीं कहना चाहिए था, नाराज हो गया।
उसे मर्द बनना चाहिए, मर्द को हकीकत का सामना करना चाहिए।
मैंने कुछ दिनों तक किसी से भी बात नहीं की, लेकिन अब्बास साहब एक वालिद की तरह मुझसे नजदीक हुए और कहा, इंसान अलग अलग रास्तों से अपने मुल्क के लोगों की खिदमत कर सकता है। अब्बास साहब ने मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने तक का सारा खर्चा उठाया। अब्बास साहब ने शुरुआत में ही मेरी माँ, भाई और बहन को भी इस्फहान ले आए और हमारे लिए एक छोटा सा घर भी लिया। मैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स पास करने के बाद टीचर बन गया और उसी स्कूल में पढ़ाने लगा जिसे अब्बास साहब ने हमारे गांव जियार में बनाया था और उसी जमाने में इस्फहान में भी पढ़ता था। इसके साथ साथ एक छोटी सी किताब की दुकान और पब्लिकेशन का काम भी शुरू किया। कुछ शायरी और कहानी की किताब पब्लिश की, लेकिन किसी में भी कोई माली मुनाफा नहीं हुआ। अब्बास साहब की शहादत के बाद कुछ वक्त तक डिप्रेशन का शिकार रहा। मैंने दोबारा काम शुरू किया, मैं चाहता था कि जिसने मुझे जिंदगी जीने का सलीका सिखाया उसे पूरी दुनिया के सामने पहचानवाऊं। मैं एक ऐसे राइटर की तलाश में लग गया जिसके कलम में शहीद अब्बास बाबाई जैसे की जिंदगी के बारे में लिखने की सलाहियत हो और तहकीकात में मेरी मदद करे। बहुत से मुहक्किक और राइटर से मिलने के बाद लैली गफूरी यानी आप तक पहुंचा। मेरे ख्याल से अब तक किताब मुकम्मल कर ली होगी।
जाओ।
आपने बुलवाया था कर्नल साहब।
बैठो।
कुछ हुआ है?
मौजूदा हालात जिसमें हर जगह यह अफवाह उड़ी है कि शाह जाना चाहता है, शायद कुछ लोग एयरबेस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। मैंने इस बारे में कमांडर करनी से बात की थी।
उनका भी मानना यह है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
जी सही है, आपका क्या हुक्म है?
मैं चाहता हूं मुल्क के हालात बेहतर होने तक एयरबेस के हवाई जहाज और दूसरी सभी मशीनों की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम संभाल लो पूरे इख्तियारात के साथ।
बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है कर्नल साहब।
अगर बड़ी नहीं होती तो तुम्हारे हवाले नहीं की होती।
ठीक है, वादा करता हूं कि मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। माफी चाहता हूं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे हालात में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम किसी को भी अपने मुल्क का माल लूटने नहीं देंगे। अगर इंटरनेशनल ओपिनियन हमारे मुल्क के लूटे जाने पर ही खुश होगा तो मेरी नज़र में बेहतर है कि वो खुश ना हो। उनके सामान में हमें ऐसे पार्ट्स मिले हैं कि अगर ले जाते तो हमारे जहाज उड़ने के लायक नहीं रहते।
कर्नल सुल्तानी कहाँ है? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ।
उन्हीं के दिए हुए हक की बुनियाद पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हेलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, काट दिया।
मुसीबत न मोड़ लें।
ये मुसीबत मोड़नी होगी कर्नल साहब। अगर आज इनके सामने खड़े नहीं हुए तो बाद में मुल्क के मखरूज रहेंगे।
अब्बास।
जी फरमाइए कर्नल साहब।
क्या तुम्हें यह पता चला है कि उबोरी हुकूमत ने F-14 बेचने का फैसला लिया है?
बेच दे।
किसे?
कहीं भी, यूरोप या रशिया।
किस लिए?
उनका कहना है कि इनकलाब कामयाब हो गया और अब हमें इन जहाजों की जरूरत नहीं। इनके मेंटेनेंस का खर्च भी ज्यादा है।
लेकिन अमेरिका के अलावा सिर्फ हमारे पास F-14 है। इसके अलावा कई F-16 भी खरीदे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक उनकी डिलीवरी नहीं दी है। फर्ज करें कि अगर इस इलाके में जंग छिड़ जाए तो इन F-14 को बेचना किसके फायदे में रहेगा?
बात तो सही है।
इजाजत है?
कमांडर इन चीफ के दफ्तर से कनेक्ट करो।
सलाम अलैकुम पापा।
तुम मसूद हो?
जी आप ठीक हैं?
तुम्हारे ईरान जाने से सब परेशान हैं। ये बताओ, उन्होंने पासपोर्ट दे दिया?
जी दे दिया। आपको गफूरी साहब को फोन नहीं करना चाहिए था पापा।
मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ होगे, ऐसी बचकानी बातें करोगे।
लेकिन मेरे पासपोर्ट का उनसे कोई लेना देना नहीं था।
जल्द से जल्द टिकट निकाल कर वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ ने हमें परेशान कर रखा है।
अब तो आप लैली का हाल तक नहीं पूछते।
अगर बेहतर हुई होती तो तुम खुद ही हमें बता देते।
पापा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है।
कितने चाहिए?
तकरीबन $30,000।
मसूद बेटा, मैंने अपने दोस्त से जो न्यूरोलॉजिस्ट से बात की है, तुम्हें नहीं पता कि तुम किसी ऐसे के लिए अपनी जिंदगी जाया कर रहे हो जिसके बारे में ये तक नहीं पता कि वो होश में कब आएगी, या ऐसे कहूँ कि होश में आएगी भी या नहीं।
दिन ब दिन लैली की हालत बेहतर हो रही है।
जितने दिन लैली हॉस्पिटल में रहेगी, कई लोगों को उसका फायदा होता रहेगा।
माफ कीजिए पापा, लेकिन इस वक्त मुझे आपके साथ बहस करने का बिल्कुल हौसला नहीं है।
मेरा दिल चाहता है कि अगली मर्तबा जब हम एक दूसरे से बातें करें तो आमने सामने बैठ कर करें।
हेलो हेलो,
जब तुम एयर पेट्रोल पर जाओगे, कैस्पियन से लेकर खलीज फारस तक परवाज करोगे या अपने मुल्क के मशरिक से मगरिब का चक्कर लगाओगे, तुम्हारा दिल इस सरजमीन की मोहब्बत से मालामाल हो जाएगा। वहाँ ऊपर से कीना जैसी बुराई, लोगों के बीच हसद, माले दुनिया को लेकर छोटी छोटी बातें, झगड़ा फसाद दिखाई नहीं देता। उसके बदले जो चीज दिखाई देती है वो है लोगों के इश्क से भरी मेहनत और मशक्कत, जिससे वो अपनी सरजमीन को आबाद करते हैं। किसान किसानी करते हैं, मजदूर तरह तरह की मजदूरी करते हैं। वह ऊपर से तुम अपने वतन के आशिक हो जाओगे, तुम्हारे बस में नहीं, तुम चाहो या ना चाहो। ऐ काश ऐसा हो सकता कि तुम भी मेरे साथ परवाज करती मलिहा।
वाह वाह, दूसरे सभी खतूत की तरह जो उन्होंने अपनी बीवी को लिखे थे कितना खूबसूरत है। मेरे ख्याल से लैली, ये आदमी शहीद बाबाई सिर्फ पायलट नहीं थे, शायर भी थे, क्योंकि आशिक थे, है ना? तुम होश में आ जाओ, मैं भी तुम्हारे लिए आशिकाना शेर लिखूंगा। ये क्या है? सुबह पायलट अमीरी के साथ अपॉइंटमेंट था, कह रहे थे कि शहीद बाबाई का पायलट बनना खुदा की नेमतों में से था। पायलट अमीरी,
कौन है?
मैं कैप्टन अमीरी हूं और तकरीबन 7 सालों से इस बेस पर फ्लाइट ट्रेनर हूं, यानी जब से रिटायर हुआ हूं।
कुछ अपने बारे में बताएं कि आपकी उन बुजुर्गवार से कैसे पहचान हुई और उनके साथ आपने जो वक्त बिताया।
बेशक, मैं और अब्बास टेक्सास के लोवाक शहर के करीब रीस एयरबेस में एक साथ पढ़ते थे, रूममेट थे। लेकिन उनके साथ कुछ दिनों के लिए एक अमरीकी उनके कमरे में रहता था, ये एयरबेस का कानून था। ये इसलिए था कि जो स्टूडेंट्स अमरीकी नहीं थे उनकी अंग्रेजी सुधर जाए।
कैप्टन अमीरी,
बोलो।
माफी चाहता हूँ, एक इमरजेंसी है, एक हवाई जहाज में कुछ मुश्किल पेश आ रही है।
ठीक है, अभी आ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, एक इमरजेंसी आई है, कंट्रोल टावर जाना होगा। आज आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, फिर कभी करेंगे।
कोई बात नहीं, आप जाइए।
सलाम अलैकुम आरश। हाँ, तुम्हारा काम था, सुनो। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा दो, गाड़ी बेचने के लिए, वही जो चला रहा हूँ। अगर मेरे नाम पर होती तो मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत क्यों पड़ती भाई? पापा के, हाँ पैसे दे दूंगा। देखो जल्दी करना, तुम्हारा इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम, माफ़ कीजिए, मुझे आज़ादी एयरपोर्ट का फ़ोन नंबर चाहिए था।